ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके।
श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 3। यहा अविज्ञाता अर्था तस्या पुरुषस्य सखा ईश्वरः यत् न विज्ञेयते पुंभे नाम भी वा क्रिया गुणैः। यो विज्ञातर्ततस् अर्हतस्तस्य यो विज्ञातार्हतस्तस्य यो विज्ञातार्हतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्ना विज्ञायते पुंभे यन्ना विज्ञायते पुंभे नाम भेर्वा क्रिया गुणैः नाम भेर्वा क्रिया गुणैः यो विज्ञातार्हतस्तस्य
जो अविज्ञाता अज्ञात आहृतः वर्णित तस्य उस पुरुषस्य जीव का सखा चिरमित्र ईश्वरः स्वामी यत् क्योंकि न कभी नहीं विज्ञायते जाना जाता है पुंभिः जीवों द्वारा नाम भी नामों से वा अथवा क्रियागुणैः कर्मों या गुणों द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति विदान स्वयं श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। जिस पुरुष को मैंने अविज्ञाता कहा है वह जीव का स्वामी तथा चिर मित्र परमेश्वर है। चूंकि जीव श्री भगवान को भौतिक नामों गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहा आता है। तात्पर्य चूंकि श्री भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रह आता है इसलिए वैदिक साहित्य में उन्हें निराकार अविज्ञाता या अवांगमय गोचरः नामों से अभिहित किया जाता है। यह तथ्य है कि यहाँ तक रूप नाम गुण लीलाओं का संबंध है श्री भगवान को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है तो वह उसके नाम रूप गुण आदि सभी सम सभी समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। भक्तिया माम विजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः। जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वह श्री भगवान को स्वरूप से देख समझ सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों में प्रवृत्त सामान्य पुरुष भगवान के रूप नाम तथा कर्मों को नहीं समझ सकते, किंतु भक्त भगवान को अनेक प्रकार से जान सकते हैं। उसे पता है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, उनका पता गोलोक वृंदावन है और उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान के रूप तथा कार्यों को भौतिकता ग्रस्त लोग नहीं समझ सकते, इसलिए शास्त्रों में उन्हें निराकार कहा गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के कोई रूप नहीं है, अपितु इसका अर्थ यह है कि कर्मी उसे समझ नहीं पाते। ब्रह्म संहिता में उसके रूप में सच्चिदानंद कहा गया है। पद्म पुराण के इसकी पुष्टि की होती है। अतः श्री कृष्ण नामादिन भवेद ग्राह्यम इंद्रिय ही सेवोन्मुखे ही जुहादो स्वयमेव ही स्मृत्यतः। कोई भी अपनी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता, किंतु भगवान भक्तों के दिव्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने को स्वयं प्रकट करते हैं। क्योंकि भौतिक इंद्रियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप तथा गुण नहीं जाने जा सकते, अतः उन्हें अधोक्षज अर्थात भौतिक दृष्टि से परे कहा गया है। जब इंद्रियां भौतिक भक्तियोग द्वारा शुद्ध हो जाती है तो भक्त भगवान के विषय में सब कुछ जान सकता है। इस श्लोक में पुंभिर नाम भिर वा क्रिया गुणैः पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम कार्य तथा गुण हैं, किंतु इनमें से एक भी भौतिक नहीं है। शास्त्रों में इन नामों कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख होने तथा भक्तों द्वारा समझे जाने पर भी कर्मी उन्हें नहीं समझ सकते और ना ज्ञानी ही। यद्यपि भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ देवों तथा मनुष्यों के नाम मिलाते रहते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते। अतः वे यह मानकर चलते हैं कि उन्हें कोई भी नाम प्रदान किया जा सकता है। उसका विश्वास है कि परम अध्याय का शीर्षक है नारद तथा राजा प्राचीन वर्षी के मध्य बातचीत। तो यह अध्याय का शुरुआत होता है प्राचीन वर्षी नारद मुनि से कहते हैं कि नारद जी, आपने तो बहुत समझाया हमको उपमा के द्वारा, एक अंजसा के द्वारा कि मेरा स्थिति क्या है वगैरह, लेकिन मैं बहुत कर्म बंधन में फंसा हुआ हूँ, इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें नहीं समझ में आता है। हाँ, तो कृपया करके मुझे फिर से समझाइए संक्षिप्त में और सरल रूप में। तो ये स्वाभाविक है कि वैदिक साहित्यों को समझना है तो हमको इंद्रियां, हमारी मन शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में हम वैदिक साहित्यों को हम समझ नहीं सकते। और दूसरे शब्दों में बोला जाए, अगर जैसे श्री राधा गिरिधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुमित्रा मैं, वैदिक साहित्यों को समझने के लिए हमको शुद्ध होना चाहिए, और दूसरी ओर बोला जाता है
और वैदिक साहित्य के द्वारा ही हम शुद्ध हो सकते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधास्पद लगता है, लेकिन इन दोनों में समन्वय है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है, लेकिन साथ साथ में वेदेश सर्वे रहम वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा भगवान को ही जानना चाहिए। ऐसे कभी कभी शास्त्रों में दोनों जगह परस्पर विरोधास्पद बातें हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सही बात है, अगर किसी को भगवद्गीता भागवत अच्छी तरह समझना है हमको शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध हुए बिना ये सारे बातें हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये प्राचीन वर्षित ये सब प्रसंग सुनने के बाद नारद मुनि से प्रश्न पूछने से वो क्या कर रहे हैं, वो जिज्ञासा करके वो श्रवण कर रहे हैं। भले ही हमको समझ में आए नहीं आए, अगर हमारे पास उत्सुकता है सुनने का, तो स्वाभाविक तरीके से जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा ये वैदिक साहित्य हमारे लिए बहुत सरल और सहज हो जाता है। ये बात हमको प्राचीन परिषद की ये प्रसंग से सीखने को मिलता है। तो उसी बात को और स्पष्ट रूप में इधर नारद मुनि कहते हैं कि जो उन्होंने पहले पुरंजन उपाख्यान में जितने भी शब्द कहे हैं उन सबको अभी सारांश रूप में एक एक शब्द को वर्णन करेंगे और सरल रूप में। पहले तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल रूप में किए। पहले पुरंजन उपाख्यान की शुरुआत में अविज्ञेय ये शब्द इस्तेमाल किया था उन्होंने भगवान को संबोधित करते हुए। तो फिर से उसी अविज्ञेय के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। ये बताते हैं कि द पर्सन आई हैव डिस्क्राइब्ड, मैंने जो जिन व्यक्ति का वर्णन किया अविज्ञेय करके, वो अविज्ञेय भगवान है। वो कौन है? आपके वांग मन गोचरा, अवांग मन गोचरा, यानी वांग मतलब वाणी, मन मतलब मन, गोचरा मतलब प्राप्त किए जाना, उनको मन और वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते या उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं कर सकते और मन के द्वारा उनका कल्पना नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी इधर तीन शब्द तात्पर्य में इस्तेमाल करते हैं। एक है अवांग मन गोचरा, और बताते हैं कि बिकॉज सुप्रीम नोन एज ही समटाइम्स इस कैन वेरी निराकारा अविज्ञाता अवांग मन गोचरा। तो पूरा तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी इसी बात को स्पष्ट उल्लेखन करते हैं कि भगवान को बद्ध अवस्था में या बद्ध स्थिति में हम नहीं समझ सकते। तो अगर नहीं समझ सकते, अगर हम बद्ध हैं, तो भगवान को समझने का तरीका क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो भगवद्गीता के जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो कोट करते हैं श्री प्रभुपाद जी, भक्तियाँ माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। ततो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, अगर भगवान को अगर समझना है, अविज्ञाता जो अविज्ञाता जिनको हम नहीं समझ सकते उनको अगर समझना है, तो हमको एकमात्र कार्य करना पड़ेगा। वो क्या है? वो है भक्ति। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान या स्पष्ट रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदेश दुर्लभम, वेदेश दुर्लभ मतलब हमारा बहुत भौतिक बुद्धि के द्वारा वेदों की नाना प्रकार की जो तत्व है उनको समझने के लिए प्रयास करेंगे, इतना समझने के बाद भी, इतना प्रयास करने के बाद भी भगवान को हम नहीं समझ सकते। लेकिन किसको आराम से समझ में आ जाते हैं भगवान? वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा हम ये प्रसंग में सुनते हैं कि नारद मुनि का ही कहानी कि किस प्रकार बड़े बड़े लोग, बड़े ब्राह्मण भगवान को नहीं समझ सकते, उनको प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहानी सबको मालूम है। तो एक बार नारद मुनि जा रहे थे तो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण मिला, नारद मुनि तो घूमते रहते, भगवान से मिलते रहते, तो ब्राह्मण ने पूछा कि भगवान से ज़रा पूछिए कि मैं कितने, कब मुझे मुक्ति मिलेगा। तो नारद मुनि, ठीक है मैं जब पूछ के आता हूँ। वापस नारद मुनि जा रहे थे, वापस जाते समय उनको सामने रास्ते में एक मूछी मिला। वो अपना काम कर रहा था और साथ साथ में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा था। तो नारद मुनि गए उनसे, उन्होंने भी पूछा कि नारद मुनि आप जरा भगवान से पूछिए मुझे कब मुक्ति मिलेगा। तो नारद मुनि भगवान के पास जब गए तो भगवान से उन दोनों के बारे में पूछा, तो भगवान ने बताया कि ब्राह्मण को हजारों करोड़ों जन्मों के बाद भी मुक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन ये मुझे जो अगले जन्म में मेरे पास जरूर आ जाएगा। नारद मुनि बहुत हो गए, विचलित हो गए। तो ठीक है, भगवान ने बताया करके वापस आके बताए, ब्राह्मण को बताए, देखो तुम्हारा हजार करोड़ जन्म होने के बाद भी असंभव है तुम्हारा मुक्ति। लेकिन मुंशी के पास जब जाके बताए, मुंशी बहुत खुश हो गया। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे ऐसा कैसे होता है, मैं तो सारा वेदों का विद्वान हूँ, इतना पांडित्य है मेरे पास, मैं इतना शुद्ध जीवन यापन करता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं प्राप्त होंगे, तुमने कुछ गलत किया होगा। तो नारद मुनि कन्फ्यूजन था, जाके भगवान के पास जाके पूछे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सही बात है, ब्राह्मण को जल्दी लेना चाहिए आपको, ये तो भी शुद्र है। तो भगवान ने बताया, तुम जाके ब्राह्मण के पास जाके बताना इस बात को कि मैं एक सुई का जो छेद है उसके अंदर से मैं एक ऊंट को घुसा रहा था। तो नारद मुनि जब ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण बोला, देखो मेरे ख्याल से ऐसा झूठ बोल रहे हो आप, भगवान से मिले ही नहीं हो आप। हाँ, अब जब आप भगवान से मिलने के लिए गए थे तो आप क्या कर रहे थे भगवान, बताओ जरा। तो नारद मुनि ने बताया, जब मैं भगवान से मिलने के लिए गया था, एक सुई का जो छेद है उसके अंदर से ऊंट को घुसा रहे थे। ब्राह्मण बोला, हाँ यही सबूत है, तुम भगवान से पास गया नहीं, ऐसा तो कोई कर सकता है कि असंभव है, तो भगवान के पास गया नहीं, खाली झूठ मुझे परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अगला जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। ऐसा कभी होता है, कोई कर सकता है कि सुई का छेद से इतना छोटा है उसके अंदर से ऊंट को घुसाना, ये नहीं हो पाएगा। तो जब नारद मुनि वही मुंशी के पास गया, वो पूछा कि जब आप भगवान के पास गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे, क्या लीला कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बताया कि एक सुई का जो छेद है उसके अंदर से एक ऊंट को घुसा रहे थे। तो मुझे एकदम आनंद विभोर हो गया, देखो मेरे प्रिय भगवान वो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो भक्त्यात् अरण्या शाक्या हम एवं विदोषो अर्जुना ज्ञातुं दृष्टुं तत्त्वेन प्रविष्टुं तपरां तपा। भक्त्यात् अरण्या शाक्या अहम एवं विदोष अर्जुन, भक्ति के अलावा मुझे इस प्रकार या दो भुज रूप में कोई समझ नहीं सकता, इस प्रकार ग्यारहवें अध्याय में भगवान बताते हैं। तो पूरा शास्त्र में केवल किस प्रकार भगवान को भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है समझने का, भगवान को समझने का भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है करके बताया गया है। इवन उपनिषद में भी जहाँ बड़े बड़े तात्विक दृष्टिकोण से, तत्व के दृष्टिकोण से भगवान को समझने के लिए प्रयास करने के लिए मौका दिया जाता है उपनिषदों में, लेकिन वही उपनिषद कहते हैं कि नायम मात्म प्रवचनेन लभ्यो न मे दशा न बहुनाश्रुतेन यम ये वैश्य विरुणिषेत विरुणते तेन लभ्य तस्यास्म विरुणते तनु स्वाम कि नायम आत्म प्रवचनेन लभ्यो, बड़ा बड़ा प्रसंगों के द्वारा मैं इतना बड़ा लेक्चर देता हूँ उसके द्वारा भी भगवान को समझ नहीं सकते, ना मेदशा ना बुद्धि के द्वारा, ना बहुना श्रुते ना सारा बड़ वेदों का श्रुति के द्वारा भी हम भगवान को नहीं समझ सकते। किन को भगवान प्रकट होते हैं, तस्यै सेवनुते तनु स्वाम, जो व्यक्ति को भगवान चुनते हैं उसी व्यक्ति को भगवान प्रकट करते हैं। वो भगवान किन को चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं जिनके अंदर तीव्र इच्छा है, तीव्र लालसा है भगवान को प्राप्त करने का, जिनका लालसा है उन्हीं को भगवान प्रकट करते हैं, उन्हीं को भगवान अपना कृपा प्रदान करते हैं। ये वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम दात्म भक्तो और वेदेश सर्वे रहमे वेद्यो, ये दोनों में इन दोनों का समन्वय क्या है। भगवदगीता में भगवान बताते हैं सारे वेदों से मुझे जाना जाता है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते थे वेदों के द्वारा भगवान को जाना नहीं जा सकता है, ये दोनों का समन्वय है। जानाति तत्त्वं भगवन् महिनो लेशानुगृहीत एव हि, जैसे भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं कि श्लोक शुरुआत अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया देशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिमनो, अगर भगवान का महिमा को जानना है तो एकमात्र चीज है, ओके, जब तक भगवान का कृपा नहीं मिलता तब तक नहीं जान सकते। तो हम केवल वेदाध्ययन करने के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा भगवान का कृपा का याचना कर रहे हैं। हमारी बलबूते भाई शास्त्रों को भगवान को नहीं समझ सकते, जब तक भगवान और भक्तों को कृपा नहीं मिलता है तब तक हम इनको समझ नहीं सकते। जब वेदेशु दुर्लभम ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब यह है कि केवल वेदाध्ययन के द्वारा हम नहीं समझ सकते जब तक भगवान को कृपा नहीं मिलता है। और दूसरी जगह वेदों का सार या वेदों का लक्ष्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसलिए हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? बहुत श्रद्धा से पढ़ना चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं कि भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाय बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। भगवान उस बुद्धियोग को प्रदान करते हैं जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं। कभी कभी बहुत सारे भक्त लोग बताते हैं, प्रभु जी ये सब समझ में नहीं आता मुझे। जैसे प्राचीन परिषद का जो स्थिति था, इतना सारा व्याख्या सुनने के बाद भी बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ऐसे भक्त लोग बताते हैं कभी कभी, बताना कि हमारा भी स्थिति वैसे ही है। लेकिन फिर भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल श्रद्धा और उत्सुकता के साथ सुनने की लालसा होना चाहिए। जिनके पास सुनने की लालसा है, जिनको सुनने का लोभ है, अस्तित्व में हमारे अंदर जो लोभ है उसको इस प्रकार लगाना चाहिए, लोभो कृष्ण कथा भक्त संगे कृष्ण कथा, भक्तों के संग में बैठ के कृष्ण का समझने का प्रयास या लोभ प्रकट करना चाहिए। तो जिसके पास ये लोभ है सुनने का, अभी उनको फिर से नारद मुनि वही बात को सुना रहे संक्षिप्त में। प्राचीन परिषद बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सबकी परिस्थिति है प्राचीन परिषद जैसा। तो फिर भी समझ में नहीं आ रहे, छोड़ो, ऐसा नहीं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बार बार उसके ऊपर ही विचार करना चाहिए। करते करते हमको इस प्रकार की बुद्धि आएगी जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, या भगवान हमको ऐसा कृपा प्रदान करेंगे जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो ये बात पूरा प्रभुपाद जी तक परपोट में समझ में आता है। और आखिरी में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार भगवान का नाम रूप गुण लीला परिकर ये सब आध्यात्मिक है। कभी कभी वेदों में इनका भगवान का अरूपम न रूपमस्य न सर्वेन्द्र विवर्जितम असक्तम सर्ववृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तुच, जैसे 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, भगवद गीता में बताते हैं। तो ये सब उपनिषदों में ये बातें बताई गई कि भगवान के पास आकार नहीं है, भगवान का कोई नाम नहीं है, ये सब बताया गया है। लेकिन साथ साथ में हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं कि भगवान का सुंदर रूप का वर्णन है, उनका नाम का वर्णन है। तो ये कैसे समझे, इस बात को भी इस तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। हे भगवान का जो गुण रूप लीला नाम वगैरह ये सब नहीं है, जब बोला जाता है इसका मतलब ये समझना चाहिए उनके पास कोई भौतिक नाम नहीं है, भौतिक रूप नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, भौतिक कार्य नहीं है इनका। हाँ, लेकिन जब भगवान का नामों का वर्णन किया जाता है, गुणों का वर्णन किया जाता है, ये सब समझना चाहिए कि इन सब आध्यात्मिक नाम है, आध्यात्मिक गुण है और आध्यात्मिक कार्यकलाप है, क्रिया है, लीलाएं हैं। तब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उनकी आध्यात्मिक कार्यकलाप गुणों में हमारा मन निवेश करना तो लक्ष्य है, तो ये उपनिषदों में इसका वर्णन दिया ही क्यों भगवान ने? हाँ, उनके पास रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्यों? वाई ऐसा लिखने की आवश्यकता ही क्या है शास्त्रों में? वाई तो वैष्णवाचार्य बताते हैं ये भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोगों का स्वाभाविक तरीके से रूप करके सुनेंगे तुरंत भौतिक रूप उनके सामने प्रस्तुत होता है। इससे सबसे पहला स्थापना करना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वो रूप नहीं है जो आप समझते हो, इसलिए रूप नहीं है करके बोला जाता है। भगवान का जो कार्य है वो उस प्रकार का कार्य नहीं है जिस प्रकार की आप समझते हो, तो इसलिए सबसे पहला नो, उनका रूप नहीं है। ये शब्द बोला जाता है उनका रूप नहीं है, यही सबूत है कि उनके पास आध्यात्मिक रूप है। जैसे श्री प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट रूप में तात्पर्य बताते हैं कि द वेरी सिंस द नेम फॉर्म क्वालिटी कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जब ये सब, दिस डज नॉट मीन दैट द सुप्रीम पर्सन एंड गॉड नो फॉर्म, इट मींस दैट देयर इज नॉट टू बी अंडरस्टूड बाय द कर्मीज और द फ्रूटी वर्कर्स, हिज फॉर्म इज डिस्क्राइब्ड इन ब्रह्म संहिता सच्चिदानंद विग्रह। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि भगवान का रूप नहीं है करके जानना। भक्त लोग ये जानते हैं भगवान का रूप नहीं है, किस प्रकार का रूप नहीं है, कोई भौतिक रूप नहीं है। तो सबसे पहला इस प्रकार का शिक्षा देना आवश्यक है, इसलिए वेद बहुत अधिकांश जगह सारे उपनिषद, खास करके सारे उपनिषद 90% उपनिषद भगवान का इस प्रकार का वर्णन करता है, जिनका रूप नहीं है, जिनका गुण नहीं है, जिनका लीला नहीं है, जिनका कार्य नहीं है। ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये नहीं जानता है कोई व्यक्ति तो सोचेगा कि ओ भगवान का बहुत सुंदर रूप है, किस प्रकार रूप है, मेरा भी सुंदर है, मेरे जैसे रूप है, इस प्रकार सोचने लग जाता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य में ये दो बातों को बताते हैं। एक है भगवान को केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, जब तक उनका कृपा नहीं मिलता तब तक उनको नहीं जान सकते। और दूसरी बात, उनका ये जो पांच चीज़ें हैं, जब भी व्यक्तित्व का आता है, व्यक्तित्व का वर्णन आता है, ये पांच चीज़ों का ज़रूर रहता है। सबसे पहला पहचान व्यक्ति का होता है नाम से, उसके द्वारा अरे ये तो इसका नाम ये है, तो उनका गुण क्या है, गुण। बाद में वो नाम, उनका रूप क्या है, इसका वर्णन आता है। उसके वो क्या करते हैं, उनका वर्णन आता है। बाद में उनका मित्र कौन है, उनका कौन के सरेचर कौन है, परिकर। तो ये पांच चीज़ों का वर्णन ज़रूर होता है एक व्यक्ति का वर्णन में। तो वैसे ये पूरा शास्त्रों में भगवान का ये पांच चीज़ों का वर्णन है। तो इसी बात को इस श्लोक में नाम भी व क्रिया गुण ही इसका वर्णन किया गया है। अभी जो भी दो मिनट थोड़ा सा, कल तो शिवरात्रि के बारे में हमने चर्चा किया था, वो लोगों के लिए शिवरात्रि है, लेकिन आज असलियत में इस्कॉन के भक्तों के लिए शिवरात्रि है। शिवरात्रि ऐसा क्यों होता है, सबसे पहला कन्फ्यूजन होता है भक्तों से, बहुत सारे लोग पूछते हैं इस्कॉन वाले क्या अलग संप्रदाय निकाले हैं क्या, पूरा दुनिया एक दिन मनाता है और आप अलग दिन मनाते हो। इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा जरूर करना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णवाणी संघ वैष्णव, हम गौड़ीय वैष्णव होने के नाते हम उदय तिथि को स्वीकार करते हैं कॉस्मोलॉजी में। उदय तिथि मतलब जिस समय सूर्य उदय होता है उस टाइम में जो तिथि है उस तिथि को हम स्वीकार करते हैं। तो कल सुबह सूर्योदय के समय शिवरात्रि नहीं था, लेकिन ठीक एक घंटे के बाद शिवरात्रि शुरू हो गया। तो पूरा दिन शिवरात्रि था लेकिन सूर्योदय के समय शिवरात्रि नहीं था। लेकिन आज ऐसा है, सूर्योदय के समय शिवरात्रि था लेकिन उसके बाद नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम क्या मानते हैं, सूर्य जिस समय उदय हुआ है उस समय एकादशी है, तो उस दिन एकादशी है। हाँ, जैसे पिछली बार भी एकादशी जो गया उस समय रविवार को ऐसा था कि सूर्योदय के समय दशमी था, लेकिन ठीक 8 बजे से एकादशी शुरू हो गया। तो सोमवार के ठीक सुबह सूर्योदय के समय एकादशी था, ठीक 8:30 बजे वो द्वादशी शुरू हो गया। लेकिन पूरा दिन द्वादशी है, लेकिन केवल सूर्योदय के समय जो तिथि है उसको स्वीकार करते हैं। तो इसके वजह से लोगों की प्रथा में और हमारी प्रथा में अंतर रहता है। जो जिस ट्रेडिशन को पालन करता है उस ट्रेडिशन को पालन कर रहे, कोई किसी का कोई दोष नहीं है। लेकिन हम जब हमारे पास जो आके पूछते हैं तब इस प्रकार उनको समझाना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। तो आज के श्लोक के संबंध में शिवजी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। शिवजी के बारे में हम जानते हैं कि वो तमोगुण के इंचार्ज है, वो डिस्ट्रॉयर गॉड, जी ओ डी मतलब क्या है, गॉड मतलब जी मीन्स जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, डी मतलब डिस्ट्रॉयर, जी ओ डी जनरेटर। भगवान वो है जो जिनसे सब उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद पालन भी करते हैं भगवान। और डी मतलब डिस्ट्रॉयर, नाश करते हैं, ये कौन करते हैं, भगवान करते हैं। लेकिन यही भगवान का जिनका वर्णन हुआ है भागवतम है, जन्म आदि अस्यता, जिनके द्वारा जन्म पालन और ये होता है, नाश होता है, लेकिन वही भगवान के बारे में उपनिषद बताते हैं कि न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत् समस्त विद्युत अधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर विविधे एव श्रूयते स्वभाविकी ज्ञानबल क्रिया च, न तस्य कार्यम नमाम कर्माणि लिंपन्ति नमे कर्म फले स्विहा, बहुत सारे श्लोक है भगवद्गीता में। मेरा कोई कार्य नहीं है, ये एक जगह उपनिषद बताते, एक जगह शास्त्र बताता है भगवान सब कुछ करते हैं, दूसरी जगह बोलते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं है। अरे ऐसे कैसे समझ सकते हैं, हाउ, ये इसका समन्वय क्या है? इसका समन्वय यह है, तो भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? उनकी शक्तियों के द्वारा, उनकी अनुचरों के द्वारा करता है, वो खुद कुछ नहीं करते। वो खुद अगर करते हैं तो एक ही चीज करते हैं, क्या करते हैं? भोगते हैं बस। गॉड हैज गॉट ओनली वन वर्क टू एंजॉय, उनका केवल एकमात्र कार्य है वो भोगना, और कुछ काम नहीं है उनका। ही इज जॉबलेस। इस संसार में अगर हमको कुछ भोगना भी है तो हमको कुछ करना पड़ता है, कुछ किए बिना भोग नहीं सकते। मान लो कि रसगुल्ला सामने हुआ है, कम से कम हाथ डाल के अंदर डालना पड़ेगा, उतना तो काम करना पड़ेगा, उतना तो मेहनत करना पड़ेगा, कम से कम उतना तो करना पड़ेगा। मान लो वो भी डाल दिया अंदर तो चपाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो हम एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भगवान को वो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्य संकल्प सत्य कामा, वो केवल संकल्प मात्र है ना, संकल्प करते बस बस हो जाता है, इसका इच्छा पूरा हो जाता है। ये है भगवान का गुण। सो इट्स गॉट ओनली वन वर्क, अगर काम है तो क्या है? एंजॉय। जैसे हम लोग भी प्रयास करते हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है, लेट्स एंजॉय, लेकिन हो नहीं पाता है। तो भगवान इस सारे संसार को देखभाल कैसे करते हैं? तो उनकी एक्सपेंशन के द्वारा करते हैं। तो शिव को शास्त्र में बताएगा, ही इज द मेटीरियल कॉज ऑफ क्रिएशन। भगवान महाविष्णु तक वो सब कुछ करने के लिए सब कुछ आते हैं, लेकिन जब भौतिक प्रकृति के साथ संबंध बना के संस्पर्श बनाना होता है तब वो भगवान हाथ उठा देते, नहीं ये नहीं करूँगा, ये तुम करो। तो महाविष्णु जब अपने दोनों आँखों से दो रेस प्रदान करते हैं, जब भौतिक प्रकृति को दृष्टि करते हैं ऊपर, साक्षता उपनिषद का एक श्लोक है, साक्षता है, उन्होंने देखा, ऐसे शुरू होता है उपनिषद। जब उन्होंने देखा मतलब दोनों आंखों से देखा उन्होंने, एक आंख से सारे जीव शक्ति को प्रदान किया और एक आंख से काल शक्ति आया। ये जीव शक्ति और काल शक्ति का जो मिश्रण होके जो मूर्तिमान स्वरूप है उसको शंभु बोलते हैं। और ये शंभु तस्मिन गर्भम ददाम्य हम, जैसे भगवान भगवता में बताते हैं कि मैं भौतिक प्रकृति के गर्भ में प्रदान किया हूँ, भगवान शिव के द्वारा शंभु के द्वारा प्रदान करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली भगवान प्रकृति को नहीं देखते, भगवान जब खाली देखते हैं वो जो उनका दृष्टि है, दृष्टि का मूर्तिमान स्वरूप है वो है शिवा, वो है शंभु। वो शंभु जब प्रकृति के गर्भ में सारे जीवों को प्रदान करते हैं और काल शक्ति को प्रदान करते हैं। इसलिए उस समय से नाश होने तक केवल एक ही व्यक्ति कार्य करता है, वो है शिव। जब शैव आगमा, जब शिव जी का गुणगान करते हैं कि यही सृष्टि है, यही इन्हीं से सब कुछ होता है, इन्हीं से सब ठीक है उनका कोई, लेकिन उनके पहले का शंभु कहाँ से आए वो बात वो वर्णन नहीं करते। तो इसलिए सारे ब्रह्मांड में वो विस्तार करते हैं शिव जी, हर एक कण में शिव है, ये भी सही बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो इस बात को हम स्पष्ट रूप में जानना चाहिए कि शिव जी भले ही वो विनाश के लिए उनका मुख्य कार्य है, वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और विनाश भी करते हैं। और सृष्टि कैसे करते हैं अभी जाना, वो गर्भ प्रदान करते हैं, उसके द्वारा वो शंभु हर एक ब्रह्मांड में वो शिव के रूप में प्रवेश होते हैं। और यही शिव विनाश के समय 11 रुद्रों के रूप में अवतार लेते हैं। इसलिए महाविष्णु के स्तर में जो शिव है उनको क्या बोलते हैं? शंभु। और ब्रह्मा जी के स्तर में जो शिव है उनको बोलते हैं शिवा। और विनाश के समय जो रूप है शिव जी का वो है रुद्र। तो ये तीन स्तर में शिव जी अलग अलग जगह वास करते हैं, लेकिन शिव जी का जो मूल रूप है सदाशिव, और ये सदाशिव का दूसरा स्वरूप है संकर्षण। तो इसलिए शिव जी हमेशा संकर्षण को पूजा करते हैं। इसके बारे में विस्तृत वर्णन भागवतम में, भगवदगीता में, भागवतम में और अलग शास्त्रों में वर्णन हुआ है। और ये तो सृष्टि के बारे में चर्चा किया, और एक मिनट थोड़ा सा कैसे वो पालन करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। शिव जी कैसे पालन करते हैं? पालन मतलब क्या है? पोषण मतलब क्या है? पोषण मतलब ये नहीं कि कुछ आहार दे दिया, कुछ कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया। वास्तविक पोषण जीव का कृष्ण भक्ति के द्वारा होता है। माता पिता बोलते हैं हमारे बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति अगर नहीं दे रहे उनको हत्या कर रहे हैं, पोषण नहीं कर रहे हैं। तो शिव जी जीवों को पालन पोषण कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो कृष्ण भक्ति को प्रदान करते हैं। वो शिव जी आचार्य है, वो बड़े सुसंस्कृत लोगों के आचार्य है, और साथ साथ में निम्न स्तर के लोग जैसे भूत प्रेत उनको भी देखभाल करते हैं। हाँ, वो तंत्र शास्त्र का प्रणेता है, और तंत्र शास्त्र का प्रणेता हम भी एक तंत्र शास्त्र को मानते हैं, पंचरात्रिक सात्विक तंत्र है, और जितने भी 108 पंचरात्र हैं उनके वक्ता शिव जी है, और साथ साथ में जो तमसिक तंत्र है जिसके द्वारा वो निम्न स्तर के लोग उच्च स्तर में जा सकते हैं, वो निम्न स्तर के तंत्र शास्त्र का भी प्रणेता वही है और शिव जी उनको देखभाल करते हैं। और साथ साथ में जो असत शास्त्रम शिवजी शंकराचार्य के रूप में आके जो सात्विक शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति को संरक्षण देते हैं, मायावाद सिद्धांत को स्थापना करके शुद्ध भक्ति को संरक्षण देते हैं। अरे ऐसा कैसे भाई? अधिकांश लोग सोचते हैं कि शंकराचार्य के रूप में आके उन्होंने गलत सिद्धांत को स्थापना किया, उसके पीछे भी उनका पालन का उपदेश है, कृष्ण भक्ति लोगों को प्रदान करने को, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसका उद्देश्य ये है। और उनका नाश क्यों करते हैं शिव जी, प्रलय क्यों करते हैं? क्योंकि उनको गुस्सा आता है, कोई भी नाश करने के लिए उनको गुस्सा आना है, तभी तो नाश कर सकता है। ये क्यों नाश करता है कोई व्यक्ति? जब उनको गुस्सा आता है। शिवजी को क्यों गुस्सा आता है मालूम है? उतना मेहनत कर रहे हैं शिव जी, सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, सृष्टि किया, लोगों को इतना सुंदर व्यवस्था प्रदान किया ताकि वो कृष्ण भक्ति में भाग ले और इस संसार से छुटकारा पाए, लेकिन कोई भी मेरी दिया हुआ व्यवस्था को कोई भी जरा सा भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए मैं नाश कर देता हूँ। जैसे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना व्यवस्था प्रदान करते, खाना देते और जो चाहे सब मांगे पूरा करते हैं ताकि वो लड़का अच्छी तरह से पढ़े और स्कूल से पास होकर अच्छा नंबर प्राप्त करे, स्कूल से निकल जाए, वो पास हो जाए। लेकिन लड़का सब सुविधा को अपनाता है, लेकिन वो जो स्कूल जाने का लक्ष्य है वो भूल जाता है। तब माता पिता को गुस्सा आके बोलता है, स्कूल छोड़ो अभी, डूब जाओ, गाँव जाओ। तो इसलिए शिवजी क्या करते हैं, बहुत हो गया, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सारा चांस दिया तुमको, नहीं हुआ, अभी बस नाश करो, स्कूल बंद कर दो। बहुत एक संसार का पूरा स्कूल जैसा है, जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो उसको एक साल हो गया, दो साल हो गया, चार साल हो गया, पाँच साल हो गया, दस साल हो गए वही कॉलेज में, तो क्या फ़ायदा? तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना मतलब उससे निकल के जाना, जैसे बहुत एक संसार एक भी एक स्कूल प्रकार है, इधर आना मतलब इधर से छुटकारा पाना। तो शिव जी हमेशा देखते हैं, अरे कौन छुटकारा पा रहा है, मेरा सारा कार्य केवल इसी के लिए है। लेकिन जब कोई देखते है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते इस चीज़ों में, मैं हमेशा इधर ही रहूँगा करके सोच रहा है, तब शिव जी सोचते हैं बस बंद हो गया, अभी इसका कुछ पर्पस नहीं है, बंद कर दो इसको, स्कूल बंद कर दो। तब अपने अपने 11 रुद्रों के रूप में विस्तार करते हैं, भयंकर उनका प्रलय होता है, और प्रलय की जल में ही उनका भी शरीर प्रलय होकर अपना सदाशिव रूप को प्राप्त करते हैं। यह है थोड़ा बहुत शिव जी के बारे में। तंत्राश्रम।